मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 12 जून 2015 है और स्थान है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल अपने सभी प्यारे साथियों का, जो मेरे श्रोता भी हैं, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इसी क्रम में जैसा कि लगभग रोजाना ही होता है, मैं स्वागत करता हूं अपने उन 12 नौजवान साथियों का भी, विशेष रूप से जिन्होंने एकेडमी की 25 अक्टूबर से होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं कुमार हर्ष, आप बलिया उत्तर प्रदेश से हैं, राहुल यादव भोपाल से हैं, राम सोनी भिंड मध्य प्रदेश से हैं, पार्वती देवी चित्रकूट से हैं, आलोक रंजन मिश्र लखनऊ से, संघ रत्न गोविंद राव सरोदे नांदेड़ महाराष्ट्र से, और नांदेड़ महाराष्ट्र से ही हैं क्षीर सागर विवेक मधुकर, आनंद कश्यप आप वाराणसी से हैं, दिनेश कुमार हूथर भीलवाड़ा राजस्थान से, प्रशांत कुमार प्रियदर्शी मऊ उत्तर प्रदेश से, राजेश खन्ना बेगूसराय से, और संकेत महादिक थाने महाराष्ट्र से। तो कुमार हर्ष, राहुल, राम सोनी, पार्वती, आलोक रंजन, संघरत, क्षीर सागर, आनंद, दिनेश, प्रशांत, राजेश और संकेत, मैं आप सभी 12 नौजवान साथियों का एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से पूरे खुले मन से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप आइए, आप भी पूरे खुले मन से आइए, साथ ही साथ खुले दिमाग से भी आइए, अपने आप को पूरी तरह खाली करके आइए। और आप जितना अपने आप को खाली करके आएंगे उतना ही ज्यादा अपने आप को यहां से भरकर ले जा सकेंगे। मित्रों, ये एश्योरेंस मैं अपनी एकेडमी की ओर से आप सभी को दे रहा हूं और साथ ही साथ उन साथियों को भी दे रहा हूं जो आपसे पहले एकेडमी में अपने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आपके मन में दोस्तों एक बात हो सकती है कि सर जो कह रहे हैं कि पूरा खाली होकर के आइए, खुले मन से आइए, तो उसका क्या मतलब है? तो आज का जो मेरा मोटिवेशन वाला पार्ट है उसका काफी कुछ संबंध इस खुलेपन से और भरे पूरेपन से है। खुलेपन और खालीपन का मतलब होता है आने से पहले, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, किसी भी व्यक्ति को सुनने से पहले आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह, दुराग्रह विचारों का लेयर नहीं है। आप पूरी तरह से तटस्थ हैं और जो चीज जैसी आ रही है उसे आने दे रहे हैं और जो चीज जैसी दिखाई दे रही है उसे केवल देख रहे हैं। ये होता है खुलापन और सच पूछे तो खालीपन। और जब वो चीज हमारे अंदर आ जाती है फिर हम उसका विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण करने को कहते हैं हम एक वैज्ञानिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक चेतना। मित्रों, कल मैं आप लोगों से इसी सेक्शन के अंतर्गत जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और फिर जनरल सेंस की बात कर रहा था और मैंने बताया था कि किस तरह से जो नॉलेज है वो धीरे धीरे स्टडीज में कन्वर्ट होता है। यहां मैंने जो नॉलेज की बात की थी वो इंफॉर्मेशन से काफी कुछ संबंध रखता था, फिर वो जनरल स्टडीज में आ जाती है जो ऑब्जर्वेशन से आता है, और इसके बाद एक हमारे अंदर एक बोध पैदा होता है, जनरल सेंस पैदा होता है, जिसे हम आइडियाज कह सकते हैं, और यही हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। और फिर ये जो जनरल सेंस है और पर्सनैलिटी है वो दोनों मिलकर के फिर हमारी लाइफ की उपलब्धियां, सफलताएं और सच पूछे तो जीवन जीने का एक जो आनंद होता है उसको इंश्योर करते हैं। इसी संदर्भ में मैं अब आपसे जो आज चर्चा कर रहा हूं उसी कंटिन्यूएशन में मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जिसके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि कैसे सच पूछे तो ये पूरी की पूरी प्रकृति, पूरा का पूरा समाज खुले हुए पन्ने वाली किताबों की तरह है, जिसके पन्ने भी खुले हुए, किताब तो खुली हुई ही है पन्ने भी खुले हुए हैं, यानी एक एक पन्ना पता नहीं कहां कहां बिखरा हुआ है, बस उसमें लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। मित्रों, हमारे यहां एक बात अक्सर कही जाती है कि धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। गांव में अक्सर ये बात चलती है, हमारी ये लोग कहावत है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। इसका मतलब यही है कि हमने जो जीवन जिया है, जो जीवन के साथ इतना लंबा वक्त गुजारा है, उसकी अपनी कोई अहमियत है। और वो अहमियत यह है कि हमारे पास तुमसे ज्यादा नॉलेज है, कम उम्र वाले से ज्यादा नॉलेज है। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं कि अनुभव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। किताबों का ज्ञान अलग होता है और जीवन का ज्ञान बिल्कुल अलग होता है। लेकिन मुझे यह लगता है मित्रों कि ये जो बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं किए गए हैं, ये मुहावरा तब और अधिक सार्थक हो जाता है यदि हम एक थोड़ी सी वैज्ञानिक चेतना को लेकर चलें। मैं यहां जिस वैज्ञानिक चेतना की बात कर रहा हूं, उसका संबंध सीधे सीधे कार्य और कारण के संबंध स्थापित करने की क्षमता से है। देखिए, कोई भी एक घटना घटती है, वो घटती है, चूंकि हम उसे रोज रोज देखते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि ऐसा तो होता ही है, होता है तो अभी भी हो रहा है। हम उसके वैज्ञानिक कारण को नहीं जानते या साइंटिफिक अप्रोच हमारी नहीं होती। कुछ नहीं, वैज्ञानिकता सिर्फ यह है कि हम उसके कारण को जान लें। अगर गर्मी के बाद बरसात होती है तो ऐसा क्यों होता है, बरसात के बाद उमस बढ़ जाती है तो फिर ऐसा क्यों होता है, उमस में कूलर काम करने बंद कर देते हैं तो ऐसा क्यों होता, मतलब हर चीज के बारे में ऐसा क्यों होता है। सही पूछे तो ये वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता का मतलब ये मत समझिए कि जो केमिस्ट्री, फिजिक्स या अंतरिक्ष पर, इन सब पर जो रिसर्च कर रहे हैं लैब में बैठ करके, वही वैज्ञानिक है। वो तो एक प्रोफेशनल तरीके के वैज्ञानिक है, लेकिन एक वैज्ञानिक जीवन दर्शन भी होती है। और सच पूछे तो अभी जो योगा की बात चल रही है, एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक दर्शन है। उसको किसी धर्म, संस्कृति, जाति, क्षेत्र से जोड़कर देखा ही नहीं जाना चाहिए। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट अभी मुझे पढ़ने को मिला सदगुरु जी का, जिनका लेक्चर मैंने भोपाल में कुछ दिनों पहले सुना भी था, बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर योग हिंदू है तो फिर जो ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स है वो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन है, मतलब न्यूटन ने इसकी खोज की थी मालूम है, और न्यूटन क्रिश्चियन थे। तो ये जो सोच है कि योग हिंदू है और जो ग्रेविटेशन फोर्स की जो थ्योरी है वो क्रिश्चियनिटी है, ये वैज्ञानिक अप्रोच नहीं हुई। वैज्ञानिक अप्रोच तो अप्रोच होती है जो बिल्कुल सही तरीके से चीजों को लेकर चलती है। और मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स में जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनमें वैज्ञानिक सोच डेवलप हो, क्योंकि मित्रों सिविल सर्विस के जो आंसर आपके होंगे वो आपसे इसी तरह के वैज्ञानिक एक साइंटिफिक अप्रोच की डिमांड करते हैं। और ये जो वैज्ञानिक अप्रोच है ये आदत होती है, जीवन जीने का एक तरीका होता है। क्योंकि जो वैज्ञानिक तरीके वाला होगा, अगर उसके जीवन में कोई भी समस्या आएगी तो वह यही नहीं मान लेगा कि हाँ ये ऐसा तो होता ही रहता है, वो तुरंत उस समस्या का कारण ढूंढेगा। क्योंकि उसके पहला तो यह कि उसके अंदर यह विश्वास ही है कि यदि यह कोई समस्या है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। वो हार नहीं मानेगा, उस कारण को ढूंढेगा, फिर उस कारण पर काम करेगा और इसके बाद वो समस्या सुलझ जाएगी। तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच की बात होती है मित्रों। तो मैंने कल कहा था आप लोगों से कि आप जीवन के आसपास बिखरी हुई चीजों को पढ़ना, देखना शुरू कीजिए, उनके एनालिसिस करना शुरू कीजिए, उनसे सीखिए। तो आज मैं आपको दो तीन छोटी छोटी ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो खासकर मेरी पत्नी और मेरे अमेरिका यात्रा के दौरान से जुड़ी हुई बातें हैं। मैं चाहूंगा कि इस हिस्से को आप बार बार सुने ताकि प्रश्न आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए और इन प्रश्नों के हल ढूंढने की कोशिश करें। तो मित्रों, पहला प्रश्न ये, और सच पूछे तो ये जो तीनों बातें मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं लगभग तीन चार प्रश्न आपको दूंगा और ये आपके जनरल स्टडीज के प्री में भी काम आएंगी, आपका जो सेकेंड सी सेट का पेपर है उसमें भी काम आएगा, और सच पूछे तो जनरल स्टडीज के मेंस के भी पेपर में ये चीज काम आएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके अंदर एक अप्रोच होनी चाहिए, एक जो मानसिक क्षमता होनी चाहिए उसका प्रमाण भी होगा, और उससे भी बड़ी बात है कि ये क्षमता पैदा हो उसका एक अभ्यास भी होगा। तो मित्रों, मैं एक पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि दोहराने से फिर अधिक समय लग जाएगा। आपको अगर जरूरत महसूस हो तो इस ऑडियो को आप फिर से रिवाइंड करके इस हिस्से को सुन लीजिएगा और मैं चाहूंगा कि आप इसकी कोशिश करें, क्योंकि मित्रों दिमाग की जड़ता को तो आपको तोड़ना होगा, दिमाग के अंदर यह क्षमता पैदा करनी होगी कि वो चीजों को सोच सके, समझ सके और निष्कर्ष निकाल सके। तो मेरा पहला प्रश्न है, हम लोग भोपाल से रात के 9:05 पर हम लोगों ने फ्लाइट ली और 10:15 पर हम लोग दिल्ली पहुंच गए। रात में दिल्ली में हम कुछ घंटे रहे और दिल्ली से दुबई की फ्लाइट हमने, अब यहां से प्रश्न शुरू होता है, दिल्ली से दुबई के लिए हमें फ्लाइट मिली सुबह 4:15 पर, और 3 घंटे का सफर तय करके उसने हमें 6:15 पर दुबई पहुंचा दिया। यहां ध्यान दीजिएगा, 4:15 सुबह हमने दिल्ली से फ्लाइट ली और उसने 3 घंटे का सफर पूरा किया और दुबई हमको पहुंचाया उसने 6:15, यानी 1 घंटे का फर्क है ना। ये चूंकि ये प्रश्न इसी से रिलेटेड है तो मैं यहां आपको सतर्क कर रहा हूं। 2 घंटे तक हमने दुबई एयरपोर्ट पर हाल्ट किया। दुबई एयरपोर्ट पर हमें सुबह 8:15 दूसरी फ्लाइट मिली और उस सुबह 8:15 की फ्लाइट ने 13 घंटे का सफर किया और 13 घंटे का सफर तय करने के बाद उसी दिन दोपहर 2:15 पर हमें न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया। ये प्रश्न है मित्रों। तो अब आप ये बताएं कि दुबई से भारत के बीच समय का अंतर कितना है, साथ ही ये भी बताएं कि दुबई और अमेरिका के बीच समय का अंतर कितना है, और अंत में ये भी बताएं कि भारत और न्यूयॉर्क के बीच समय का अंतर कितना है। ये एक प्रश्न है मित्रों, लगाइए आपको बहुत मजा आएगा। और यहां पर जो मेरे फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी की चर्चा करते समय मैंने जो देशांतर रेखा का सिद्धांत आपको बताया था उसे आप यहां अप्लाई कीजिए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप ये भी समझ सकेंगे कि किस तरह से जो हम एक बेसिक तैयारी करते हैं वो बेसिक तैयारी हमको कितना स्ट्रांग बना देती है। राइट फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा प्रश्न देता हूं, इसे सुनिए। जब हम दुबई एयरपोर्ट पर उतरे तो इच्छा हुई कि कॉफी पी जाए, हम एक रेस्टोरेंट में गए, हमने कॉफी का रेट पूछा तो उन्होंने कहा कि 12 दिरहम, ये दुबई की मुद्रा है दिरहम। हमने कहा कि हमारे पास दिरहम नहीं है, हमारे पास डॉलर है, तो क्या आप डॉलर में हमें कॉफी दे देंगे? बोले यस हम दे देंगे। तो मैंने कितने डॉलर? तो उन्होंने कहा $4। राइट, तो मुझे लगा कि ये कुछ गलत बता रहा है, तो वहीं पास में ही एक एजेंट था जो खासकर विदेशी मुद्राओं का एक्सचेंज करते थे, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि $1 के बदले में कितने दिरहम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि $1 के बदले में 3 दिरहम मिलते हैं। तो मैंने डॉलर में ही कॉफी खरीदना ठीक समझा, मैं फिर से रेस्टोरेंट में हम लोग गए, हमने $4 दिए और 1 कप कॉफी पी। जिस दिन हमने ये कॉफी पी दुबई के एयरपोर्ट पर, उस दिन $1 की कीमत 66 रुपीज थी। मैं एक्सचेंज रेट बता रहा हूं, है ना, मैं वो रेट नहीं जो आप न्यूज में सुनते हैं, जो हम लेकर के आए थे RBI के उसके हिसाब से $1 के बदले में हमें 66 रुपीज देने पड़े थे। तो अब आपको निष्कर्ष ये निकालना है, उत्तर ये निकालना है, तो फिर वो 1 कप कॉफी कितने रुपए की पड़ी, है ना मित्र? मजेदार सवाल है, निकालिए, मैं दोहरा नहीं रहा हूं। मैं लास्ट एक और प्रश्न देता हूं क्योंकि समय इतना ही है, एक और प्रश्न देता हूं। हम न्यूयॉर्क में रहे, आसपास के शहरों में घूमे और इसके बाद न्यूयॉर्क का मौसम काफी कभी कभी, मतलब ठंडा तो नहीं कहूंगा मैं, गर्म भी नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही प्लेजेंट मौसम था, बीच बीच में बरसात भी हो जाती थी। और बताते हैं कि यहां फरवरी के महीने में खूब बर्फ गिरती है और अगस्त सितंबर से ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और गर्मी का मौसम तो केवल 2-3 महीने का ही होता है। न्यूयॉर्क में ठंड काफी पड़ती है, मतलब एक तरह से आप इसको ठंडा प्रदेश ही मान लीजिए न्यूयॉर्क को, इसलिए न्यूयॉर्क के जीवन को थोड़ा सा कठिन भी कहा जाता है कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ अमेरिका। इसके बाद फिर हम लोग फ्लोरिडा स्टेट में चले गए जो न्यूयॉर्क के बिल्कुल दक्षिण में, सॉरी जो अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में है। जब हम वहां गए तो हमें ऐसा लगा कि हम भारत में आ गए हैं। मैंने इससे पहले के अपने ऑडियो में कभी इस बात की थोड़ी सी चर्चा भी की, हमें लगा कि हम फिर से भारत में आ गए हैं। तो अब केवल इतना बताने के बाद अब मेरे कुछ प्रश्न हैं और इसको आप मैप की सहायता से हल कर सकते हैं। और फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो मैप लेकर के बैठे। और जो मैंने पूरी दुनिया की जलवायु के वर्गीकरण को समझाने के लिए जो मैप का सहारा लिया था उस लेक्चर को याद करें। उनके पास उस लेक्चर से रिलेटेड पेपर्स भी उनके पास हैं, लिखित में पेपर्स हैं, उस पेपर को देखें और इसी बहाने उस पूरे के पूरे चैप्टर को दोहरा डालें। तो मित्रों, अब जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि तो फिर दो जगह को हम ले लेते हैं, न्यूयॉर्क और मियामी। मियामी समुद्र के तट पर स्थित है, ये मैं आपको बता देता हूं। मियामी वहां का बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है जो समुद्र के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क और मियामी, इन दोनों के मौसम के बारे में लिखिए। दोनों के गृह निर्माण का जो आर्किटेक्ट होगा, घर दोनों जगह कैसे कैसे होंगे उसके बारे में बताइए। तीसरा, वहां की दोनों में की वनस्पतियां कैसी होंगी ये बताइए। न्यूयॉर्क और मियामी, इन दोनों स्थान के लोगों की जीवन शैली कैसी होगी ये बताइए। और दोनों स्थान के लोगों का व्यापार ऑक्यूपेशन क्या होगा, कैसा होगा ये बताइए। तो ये पांच चीजें मैंने पूछी है न्यूयॉर्क और मियामी के बीच। मौसम कैसे हो, मौसम का अंतर बताइए, गृह निर्माण कला का अंतर बताइए, वनस्पतियों का अंतर बताइए, जीवन शैली का अंतर बताइए और व्यापार यानी कि ऑक्यूपेशन का अंतर बताइए। मित्रों, ये जो मैंने सवाल निकाले हैं ये जीवन के बिखरे हुए किताबों के पन्नों से निकाले हैं। जब भी आपको कोई चीज दिखाई देती है उसके बारे में जब आप सोचना शुरू करते हैं कार्य कारण संबंध से, तो फिर आपको उत्तर मिलने शुरू होते हैं। ये मैं तीन प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, प्लीज इनको बनाइए, आपको मजा आएगा, इनके हल ढूंढिए और फिर आप देखेंगे कि आपका भरोसा बढ़ेगा कि सच में सिविल सर्विस की तैयारी कैसे हम बाजार में जाते हैं तो कर सकते हैं, दुकान में गए हैं तो कर सकते हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं तो कर सकते हैं। चारों तरफ हर समय आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के मोटिवेशन वाले सेक्शन में बस इतना ही। अब मुझे कुछ सूचना देनी है, वो सूचनाएं मैं अभी ही दे दूं मित्रों, नहीं तो आखिरी में जल्दी जल्दी में फिर वो बात खत्म हो जाती है। पहली बात तो यह है कि मेरे पास दो स्टूडेंट्स के फोन नंबर आए हैं जो अक्टूबर के एकेडमी की क्लासेस के लिए आने वाले हैं। उन्होंने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं और कहा है कि जो भी उनसे संपर्क करना चाहे, उनके एरिया के स्टूडेंट्स वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे ही पहले स्टूडेंट हैं हिमांशु अग्निहोत्री जो कानपुर से आ रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9795617598। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9795617598। दूसरे स्टूडेंट हैं हितेश श्रीवास्तव जो गुना मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9993273545। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9993273545 ये उनका नंबर है। और जो भी स्टूडेंट उधर के हों वो चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। आपने ध्यान दिया होगा कल के AIR न्यूज में जो पहली न्यूज है, मैं समझता हूं सिविल सर्विस की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी है वो है बांग्लादेश को लेकर। मित्रों, आप याद कीजिए जब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अभी समझौते हुए भारत बांग्लादेश सीमा के बारे में और दूसरे समझौते हुए जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश गए थे, उस समय मैंने कहा था कि इसी के साथ साथ आपके लिए मौका है, जबकि आप आजादी के बाद के भारत के इतिहास की दृष्टि से 1971 में जो बांग्लादेश बना था उसके बारे में पढ़ लें। और इसके बारे में बहुत अच्छा जो एक चैप्टर आपको मिलेगा वो रामचंद्र गुहा की किताब है आजादी के बाद भारत, उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। खासकर उसमें देखिए जो नेहरू के बाद भारत, दो भागों में हिंदी में है, नेहरू के बाद भारत वाले वॉल्यूम में आपको इस पर एक बहुत डिटेल में लेख मिलेगा। उन्होंने बहुत डिटेल में इसको समझाया है, एक जानकारी एक समझदारी डेवलप करने के लिए वो किताब बहुत अच्छी है। अदरवाइज तो आप विपिन चंद्रा की किताब से भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आपको ध्यान आया होगा मैंने ये बात कही थी। और कल के AIR न्यूज से ये बात और भी ज्यादा कह लीजिए कि ठोस हो गई कि इस पर आपको बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। न्यूज में आपने सुना कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक तरह से वक्तव्य का विरोध किया है, भारत के वक्तव्य का विरोध किया है। एक छोटी सी मैं थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि बता दूं मित्रों कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, लेकिन यह एक सही स्टेटमेंट नहीं है। न्यूज में आपने सुना होगा कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिस पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग है वहां बंगाली होते थे, बांग्लादेश के लोग थे, और उनके साथ अक्सर राजनीतिक, बहुत जबरदस्त राजनीतिक भेदभाव किया जाता था। तो ये लोग ऑलरेडी जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ थे, उस सत्ता के खिलाफ थे, तो ये आजादी चाहते थे। और सही मायने में 26 मार्च 1971 को ही उन्होंने अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी। मतलब ऐसा नहीं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और युद्ध करने के बाद पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को कहा कि तुम आजाद हो गए हो, नॉट एट ऑल, और ऐसा संभव भी नहीं है, इंटरनेशनल लॉ है, यूएनओ है। दरअसल इन्होंने अपनी आजादी की घोषणा तो 26 मार्च 1971 को ही कर दी थी, यह डेट आपको याद हो जानी चाहिए, न्यूज में थी ये डेट। और इसके बाद जब पाकिस्तान की सेना ने या सरकार ने, जो भी कह लीजिए, बांग्लादेश पर अत्याचार करने शुरू किए, तंग करना शुरू किया, या जो भी कह लीजिए, जो भी बांग्लादेश को प्रॉब्लम आई हो, तो बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी। और जब बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी तो भारत ने फिर बांग्लादेश की मदद की, और वो जो युद्ध भी हुआ था वो जाकर दिसंबर वगैरह में हुआ था, मतलब कई महीनों के बाद हुआ था। तो भारत ने ऐसा नहीं है कि कोई हस्तक्षेप किया जो कि पाकिस्तान एक तरीके से ब्लेम कर रहा है। मूलतः भारत ने बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम था, सेना का भी नाम था मुक्ति संग्राम, उसकी मदद की। ठीक वैसे जैसे देखते हैं कि अब बांग्लादेश, श्रीलंका ने मांगी मदद, तो भारत ने वहां पीस कीपिंग फोर्स भेजी। और भी दुनिया के दूसरे देशों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी सीरिया में प्रॉब्लम हो रही तो सीरिया अमेरिका से मदद मांग रहा है, दूसरे देशों से मदद मांगी जा रही है, अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना है, उसने यूएनओ से मदद, यूएनओ उनकी मदद कर रहा है, तो इस तरह की मदद मांगी जाती है। और भारत ने उसी के तहत ही एक तरह से बांग्लादेश की मदद की थी। तो भारत को यह कहना कि वो आक्रमणकारी था, ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, भारत ने इसका खंडन किया। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश ने खुद इस बात को कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, भारत ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, हमने उनको इन्वाइट किया था और उसमें भारत से हमको मदद मिली है। दोस्तों ये तो एक आजादी के बाद के भारत का एक घटनाक्रम हो गया, लेकिन ये जो बांग्लादेश का ये जो स्टेटमेंट है जो भारत के फेवर में उसने दिया है, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ये शो कर रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की अभी जो बांग्लादेश की यात्रा हुई है, इसने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और क्लोजेस्ट और घनिष्ठ बना दिया है, बहुत अच्छे कर दिए हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि परसों के ऑडियो में जब मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा था, भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में, तो मैंने एक चुनौती की चर्चा की थी कि भारत के लिए एक चुनौती यह हो रही है बांग्लादेश में कि किस तरह से वो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान और चीन का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है उसको न्यूट्रलाइज करे, उसको कम करे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इस बात को शो कर रहा है कि बांग्लादेश पर जो पाकिस्तान का जो प्रभुत्व है, या प्रभाव, प्रभुत्व तो नहीं कहना चाहिए, जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और बांग्लादेश भारत को अपना ज्यादा, अपने ज्यादा नजदीक मान रहा है। तो ये एक घटनाक्रम है मित्रों, मैं समझता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी और ये न्यूज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सिविल सर्विस के लिहाज से जो दूसरी एक बड़ी खबर मुझे लगी दोस्तों, वो अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में हमारे जो मिनिस्टर हैं नजमा हेपतुल्ला जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, खासकर पारसी समुदायों को लेकर के। पारसी बहुत पहले भारत में आए थे, बहुत पहले से भारत में रह रहे हैं। टाटा जो मालूम है, टाटा जो इतना बड़ा नाम है, इंडस्ट्रियलिस्ट रहे जमशेद जी टाटा और रतन टाटा, ये पारसी समुदाय के लोग हैं। भारत के विकास में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा पारसी समुदायों का, ज्ञान की दृष्टि से भी, और सच पूछिए तो आपके वैज्ञानिकता के जहांगीर भामा हुए, और उद्योग की दृष्टि से भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ये आए थे और फिर ज्यादातर इस समुदाय के लोग बंबई में बस गए थे, और धीरे धीरे इस समुदाय की संख्या भी कम होती जा रही है। तो ऐसे में अल्पसंख्यक जो हमारी मंत्रालय की जो मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम इनको पूरी मदद करेंगे। और नो डाउट कि जो सबसे बड़ी बात है इस अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में, पारसी के बारे में, वो ये कि ये बहुत पीस लविंग लोग हैं, होते हैं। ये जो समुदाय है ये बहुत शांति के साथ रहना चाहता है। आप देखेंगे कि आपको पारसी समुदायों का कोई वैसा हल्ला गुल्ला नहीं मिलेगा कि किसी चीज का वो विरोध कर रहे हैं, किसी चीज के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत ही पीस लिविंग लोग होते हैं और इसीलिए जहां भी जाते हैं वहां बहुत घुल मिल भी जाते हैं, और नो डाउट कि भारत में तो ये बहुत अच्छी तरह से घुल मिल भी गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक हमारे जो मंत्रालय के जो मिनिस्टर रही हैं उन हैं जो उनका ये कहना बहुत मायने रखता है, और उन्होंने ये कहा भी है कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं हम उनकी मदद करेंगे, इनमें स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार अलग से कोशिश करेगी। उन्होंने योजना का भी नाम लिया, उस्ताद योजना, बड़ा खूबसूरत नाम है उस्ताद योजना। आपको चाहिए कि आप उस्ताद योजना के बारे में थोड़ा सा देख लें ये क्या है। दूसरी चीज आपने ये भी देखी कि मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जो स्टूडेंट हैं उनको उनके खाते में जो रकम डाली जाएगी वो जनधन योजना के तहत जो खाता खोला गया है उसमें उनका पैसा सीधे भेजा जाएगा, यानी कि करप्शन वहां भी कंट्रोल होगा। और उन्होंने ये बात भी कही है कि उनके इस खाते को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जनधन और आधार कार्ड और इन सबको लेकर के जो एक एक, एक फाउंडेशन तैयार किया जा रहा था सिस्टम के लिए, धीरे धीरे अब उस सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि सन 2013 या 2014 का अगर आप जनरल स्टडीज मेंस के पेपर उठा करके देखेंगे तो अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में प्रश्न भी पूछा गया है। हालांकि वो योजना से संबंधित प्रश्न नहीं है, वो संवेदनशीलता से संबंधित प्रश्न है। डेढ़ दो साल पहले कोई ऐसी घटना हुई होगी जिससे कि वो प्रश्न तैयार हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि चूंकि इसमें पारसी जन समुदाय की बात आई है तो पारसी समुदाय के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक इनको लेकर के एक पारसी समुदाय को लेकर के एक बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी, शायद राव साहब थी या कौन सी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म वो बनी थी। आप वो फिल्म वैसे ही कभी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर दूसरी कोई फिल्म हुई तो मैं अगले ऑडियो में इसको करेक्ट करूंगा, क्योंकि जनरल इस तरह की संज्ञा मेरे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी फिल्म थी। मित्रों, चूंकि क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको इसे थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। और न्यूज में ये बात भी थी कि आपके उसी दिन 9:30 बजे की आकाशवाणी में उनका एक इंटरव्यू भी प्रसारित किया जाएगा, नजमा हेपतुल्ला जी का एक इंटरव्यू भी प्रसारित किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सब उस साक्षात्कार को जरूर सुने, क्योंकि उस साक्षात्कार में मिनिस्टर न केवल मुझे लगता है कि इसी समुदाय के बारे में ही बात करेंगी बल्कि अपने पूरे मंत्रालय की योजनाओं के बारे में बात करेंगी कि वो क्या क्या मंत्रालय उनका करने जा रहा है। इस तरह से आपके दिमाग में एक पूरा का पूरा परसेप्शन बन जाएगा कि सरकार किस तरीके से सोच रही है, किन किन समुदायों के बारे में जान कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि वो किन किन सेक्टर में काम कर रही है। जैसे आज के न्यूज में स्किल डेवलपमेंट को लेकर के था, लेकिन हो सकता है कि वो दूसरे क्षेत्रों में भी काम कर रही हो। तो इसे आप बिल्कुल मिस न करें, इस साक्षात्कार को, इस इंटरव्यू को आप लोग जरूर सुने। मित्रों, एक जो और दूसरी जो खबर थी वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये चीज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कि एक मंत्रालय हमारा आयुष मंत्रालय, राइट। ये जो आयुष मंत्रालय है ये बेसिकली क्या है, देखिए एक स्वास्थ्य मंत्रालय है जो दवाइयों वाइयों के बारे में भी बात करता है, ध्यान रखता है। जो आयुष मंत्रालय है ये हमारे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मेडिसिन है, मतलब एक तो हमारी एलोपैथी का सिस्टम है, तो एलोपैथी तो पूरी दुनिया में छाई हुई है, लेकिन आपको ये मालूम है कि धीरे धीरे लोग अब एलोपैथी से उबने लगे हैं। बहुत सी बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका एलोपैथी, जिनका इलाज एलोपैथी के पास है ही नहीं, और दूसरी बहुत सी ऐसी इसकी दवाइयां हैं कि वो बीमारी, एक बीमारी को तो दूर करते लेकिन उसके साइड इफेक्ट होते हैं और दूसरी बीमारियां होने लगती हैं। तो धीरे धीरे लोग अब जो हमारी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मेडिसिन रही हैं, जैसे यूनानी है, आयुर्वेद है, आपके होम्योपैथ है, इसके तरफ जाने लगे हैं। तो अब जो योगा को इसी में शामिल किया गया है वो हमारा एक तरह से जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ हेल्थ रहा है, ट्रीटमेंट रहा है, वो योगा है। तो इसीलिए योगा की जब भी बात आएगी तो आप देखेंगे आयुष मंत्रालय की बात आएगी। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई भ्रम हो जाए और आपको लगे कि यार योगा तो एक फिलॉसफी थी, तो ये तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में होना चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि योगा बेसिकली एक दर्शन में शामिल इसको किया गया है, क्योंकि उस समय दर्शन की परिभाषा बिल्कुल अलग हुआ करती थी जिस समय इसको शामिल किया गया, लेकिन बेसिकली ये हेल्थ से रिलेटेड है। यह बात अलग है कि भारत ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है वो बहुत व्यापक है, बहुत संपूर्णता को लिए हुए है, उसमें केवल शारीरिक हेल्थ की बात नहीं है, उसमें मानसिक हेल्थ की भी बात है, उसमें आत्मा को भी जोड़ा गया है। और सच पूछे कि आत्मा को जोड़ दिया गया, इसीलिए अब कुछ लोग इसको ना ये मान करके चलते हैं कि नहीं नहीं ये तो हिंदुओं का है, हिंदू फिलॉसफी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और आपको मालूम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूएनओ ने घोषित किया है, पूरी दुनिया में इसकी तैयारी चल रही है, और खासकर चूंकि हम लोग अभी अमेरिका में हैं, विदेशों में जितने भी भारतीय बसे हुए हैं वो इसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित है, और यहां बहुत जोर शोर से डेफिनेटली इस दिवस को मनाया जाएगा। और दोस्तों इससे पहले भी हमारे जो रजनीश थे वो यहां आए थे, उन्होंने योग के बारे में यहां के लोगों को शिक्षित किया, और रजनीश के तो जो ज्यादातर चेले हुआ करते थे वो विदेशी ही हुआ करते थे, उनको योग बहुत आकर्षित करता था। और आप देखते हैं कि श्री श्री रविशंकर भी बहुत ज्यादा विदेशों में के दौरे करते हैं, और उनके बहुत से यहां खुले हुए भी हैं, उनके संस्थान भी विदेशों में, मेरी समझ से लगभग 100-125 देशों में उनके संस्थान खुले हुए जो लोगों को योगा सिखा रहे हैं, तो योगा यहां बहुत पॉपुलर है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। मित्रों बस एक छोटी सी खबर और थी कि आपने देखा कि एक मंत्रालय के बारे में बात आई थी, और उस मंत्रालय ने कहा कि वो एक अपनी जो रिक्वेस्ट है वो पहले मंत्रालय को भेजेगा, और फिर मंत्रालय उस पर कैबिनेट नोट बनाएगा, और फिर कैबिनेट नोट फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बारे में मैं आपसे फिर कभी डिटेल में बात करूंगा। अभी अगर मैं जल्दी जल्दी में करूंगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, आपको बताऊंगा कि कैसे सरकार निर्णय लेती है, इस निर्णय के बारे में मैं कभी इत्मीनान से आपसे इंडिपेंडेंटली बात करूंगा। तो मित्रों कल के IR न्यूज के बारे में इतना ही। अब मैं आपको छोटी सी जो कुछ खबर है वो देना चाहूंगा कि शनिवार को बट नेचुरल की जैसे आपको अखबारों की क्लिपिंग्स मिलती हैं, अखबारों की क्लिपिंग्स आपको मिलेंगी, तो शनिवार को आपके लिए अखबारों की क्लिपिंग्स हैं। संडे को डेफिनेटली योजना के आर्टिकल्स, हिंदी और इंग्लिश के योजना के आर्टिकल्स आपको नॉलेज सेंटर में पढ़ने को मिलेंगे, तो आप वहां देख सकते हैं। और इसी दौरान जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है, जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के जो स्टूडेंट रहे हैं उनको उनके ईमेल पर स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा, तो वो अपने मेल को एक्सेस कर लेंगे, ध्यान देंगे। और मित्रों इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे अब आप इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दें। 2 दिनों के बाद हम लोग फिर मिलेंगे और फिर सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में खूब सारी बातें करेंगे। नमस्कार।